सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। मैं जानती हूं कि आप हमारी सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम जानते हैं हमारे सीजन 1 में हमने क्या क्या सुना था। हमारे पहले सीजन में हमने आदि पर्व की कथाएं सुनी, जिनमें मुख्य भागों की बात की जाए तो जन्मेजय का नाग यज्ञ और उस यज्ञ के होने का कारण बताया गया था। कहानी की असल शुरुआत होती है पोलोम पर्व से, जहां अनेकों कथाओं को जोड़कर हम पहुंचते हैं आस्तिक पर्व में। आस्तिक पर्व में हम सुनते हैं ऋषि जरत्कारु की कथा, जो अपने पितरों के अनुरोध से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जरत्कारु ऋषि की पहली शर्त यह थी कि वे उसी कन्या से विवाह करेंगे जिसका नाम उनके नाम के जैसे होगा। उनकी दूसरी शर्त के अनुसार वे उसी कन्या से विवाह करेंगे जो उन्हें दान में मिलेगी। एक दिन वन में विचरते हुए ऋषि जरत्कारु को नागराज वासुकी मिलते हैं, जो अपनी बहन सर्पिका जरत्कारु का दान ऋषि को देते हैं। ऋषि विवाह की भी कुछ शर्तें तय करते हैं, जैसे कि वे उस कन्या का पालन पोषण नहीं करेंगे, और अगर कुछ भी उनके इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो वे अपनी पत्नी को उसी क्षण त्याग देंगे। अब सवाल ये है कि नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऐसे ऋषि के साथ क्यों कराया। इस कहानी के पीछे का रहस्य छुपा है सतयुग में। सतयुग में प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां कद्रु और विंता का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। अपने पति से वरदान पाकर विंता को दो पुत्र पक्षीराज गरुड़ और अरुण प्राप्त हुए थे, और कद्रु को 1000 नाग पुत्रों की प्राप्ति हुई। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद कद्रु के 1000 अंडों में से नाग पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन विंता के अंडों में कोई बदलाव नहीं आया। विंता ने स्वयं ही एक अंडे को फोड़ दिया, जिसके कारण अरुण का आधा शरीर ही विकसित हो पाया। क्रोध में आकर अरुण ने अपनी माँ विंता को शाप दिया कि वे 500 वर्ष तक अपनी ही बहन की दासी बनकर रहेगी। लेकिन फिर अपनी माँ पर दया भाव दिखाकर अरुण ने कहा कि उनका दूसरा पुत्र ही उन्हें इस दासता से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन उसके जन्म के लिए विंता को 500 वर्ष तक और इंतजार करना होगा। 500 वर्ष बीत जाने के बाद विंता के दूसरे पुत्र पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ। इसके बाद हमने आस्तिक पर्व में ही समुद्र मंथन की कथा सुनी, और उसी कथा से हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश छीन लिया था और देवताओं को अमृत पान कराया था, जिसके बाद उनके बीच एक भीषण युद्ध भी हुआ था। समुद्र मंथन में उच्चैश्रवा नाम के घोड़े की उत्पत्ति हुई थी, जिस पर कद्रु और विंता में शर्त लगी थी कि उच्चैश्रवा की पूंछ का रंग काला है या सफेद। कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था कि वे काला बाल बनकर उच्चैश्रवा की पूंछ में लग जाएं, ताकि वो शर्त जीत सके, लेकिन उसके पुत्रों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। जिसके बाद क्रोध में आकर कद्रु ने अपने पुत्रों को शाप दिया कि वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे, और इसी शाप का निवारण करने के लिए नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से कराया, क्योंकि ब्रह्मा जी के अनुसार उन दोनों का पुत्र आस्तिक ही नागों को इस संहार से बचाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आयोजन क्यों किया। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को नागराज तक्षक ने छल से डसकर मार दिया था, और उनको बचाने के लिए आ रहे काश्यप ऋषि को भी अधिक धन देकर वापस लौटा दिया था। इसी कारण जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आयोजन किया था। आदि पर्व के अंत में जन्मेजय ने अपने पूर्वजों के बारे में जाना था। हमारे आखिरी एपिसोड में हमने गंगा पुत्र देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा सुनी थी। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसी कारण देवव्रत का नाम भीष्म हुआ। भीष्म के पिता सम्राट शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया था। सत्यवती महर्षि वेद व्यास की माता ही हैं। हमारे सीजन 2 में हम शुरुआत करेंगे कौरवों और पांडवों की कथा, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कौरव पांडवों से इतनी नफरत क्यों करते थे। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि भीम को 1000 हाथियों का बल किस प्रकार मिला, आखिर कैसे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने और क्यों कर्ण हमेशा अर्जुन से ईर्ष्या का भाव रखते थे। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे सीजन 2 में 15th ऑफ अगस्त को, तो भूलिएगा नहीं, आपका इंतजार रहेगा।